पृष्ठ संख्या 157, अध्याय 13। दूसरे दिन जब बसंती उठकर बाहर आई तो सदा की भांति ही सबके साथ हंस बोल रही थी, मानो रात का कांड हुआ ही ना हो। महारानी जी, तुम आग जलाकर चाय के लिए पानी रखो, मैं दूध लेकर आती हूँ, उसने रुक्मी से कहा। फिर उसी तरह कोठरी के अंदर झांक कर दीनू को संबोधित करती हुई बोली, अभी साहिब बहादुर सो रहे हैं, चाय तैयार होने तक जाग जाएंगे, तू चाय बना। इसी तरह काम पर जाने से पहले रुक्मी को हिदायत देने लगी, पानी का घड़ा भरकर ले आना, नल 10 बजे बंद हो जाते हैं। फिर हंसकर बोली, किसी से पूछ लेना 10 कब बजते हैं, और साहिब बहादुर का कुर्ता और पैंट नल पर से ही धो लाना। फिर उसी लहजे में साहिब बहादुर से बोली, साहिब बहादुर, मैं काम पर जा रही हूँ, लंच पर मुलाकात होगी, टाटा। बसंती बाबुओं के घरों से सुने वाक्य किसी अभिनेत्री की तरह दोहरा रही थी। वह बाहर निकल गई और फुर्ती से अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोंस लिया, फिर चलते चलते ही बीड़ी सुलगा ली और लंबे लंबे कस लेती हुई मोहल्ले की ओर बढ़ गई। कल तक बात बात पर दीनू का मुंह जोहने वाली बसंती आज अपने आप ही घर मालकिन की तरह व्यवहार करने लगी थी, जैसे जैसे उसने अपने को पहचान लिया हो, जैसे उसने यह भी समझ लिया हो कि घर टूट नहीं सकता, इसे बनाए रखने में ही कुशल है। दीनू पप्पू को बहुत चाहता है, मैं पप्पू को उससे अलग क्यों करूं? दीनू रुक्मी को भी नहीं छोड़ सकता, वह उसे यहाँ लाया है तो कैसे छोड़ दे? रुक्मी अब उसे सौत नज़र नहीं आ रही थी, पर एक ऐसी औरत जो उस पर निर्भर थी, जो उसकी कमाई खाती थी, बसंती की नज़र में एक संतुलन सा आ गया था, और संतुलन आते ही अपनी स्थिति पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई थी। दबती तो वह पहले भी नहीं थी, करती भी सदा मनमानी ही थी, पर अब मानो उसने अपने स्थिति का भेद पा लिया हो, और निस्सहायता, संशय और अनिश्चय का भाव शरद के सूखे पत्तों की तरह झर गया हो। एक पृष्ठ संख्या 158। ही रात में यह सब हो गया था, वह अपना लड़कपन लांघ आई थी और घर में स्त्री की भूमिका निभाने लगी थी। फिर दिन बीतने लगे, उसने साइकिल चलाना सीख लिया, और अब काम पर जाती तो दीनू की साइकिल पर बैठकर बीड़ी के कष्ट छोड़ती हुई, चुस्त दुरुस्त, उजले कपड़े पीछे जूड़ा बंधा हुआ और उसमें लाल रंग का रिबन लहराता हुआ, घरों में चौका बर्तन का काम वह पहले भी बड़ी मुस्तैदी से करती थी, सुबह सवेरे काम पर निकल जाती, जाने से पहले घर का सारा प्रबंध करके जाती, पप्पू को दूध पिला जाती और घर वालों को हिदायतें भी दे जाती। तीन घर निपटा कर वह साइकिल के पैडल मारती घर लौटती, और घर के अंदर घुसते ही सिर पर से पल्ला उतार फेंकती, पप्पू को दूध पिलाती और आग सुलगा कर रोटियां सेकने लगती। दीनू और रुक्मी उसके साथ बदल तो नहीं गए थे, लेकिन उसके साथ हुए बराबरी भी नहीं कर सकते थे। रुक्मी बसंती से खम भी खाती थी और उससे डाह भी करती थी, पर अंदर ही अंदर वह दिल्ली में अपने पति के साथ आई थी, पर यहाँ पति का दबदबा भी वह नहीं रह गया था जो गांव में हुआ करता था। यह कलमुही कौन है जो कोठरी में आ घुसी है और अपने बेटे को भी साथ ले आई है और मेरी छाती पर आकर बैठ गई है? कभी कभी एक सालती हुई आग की लपट उसके अंदर उठती और उसका कलेजा चाट जाती, पर फिर उसकी निस्सहायता उसे और भी ज़्यादा दुर्बल और शिथिल बना देती। उसके बच्चा नहीं हुआ, जबकि इस कलमुही ने दीनू की गोद में अपना बच्चा डाल दिया है। दिल्ली शहर में वह कोठरी के बाहर कदम नहीं रख सकती थी, बात बात पर बसंती का मुंह जोहना पड़ता है। वह पैसे ना दे तो घर में चूल्हा नहीं जलता था, और तो और अपने इलाज के लिए भी वह बसंती पर ही आस लगाए बैठी थी कि शायद इसकी मदद से कभी उसका गर्व टिक जाए। उधर दीनू पहले की तरह ही ऐंठता था, पहले ही की तरह गुर्राता भी था, अपनी हुकूमत भी चलाता था, पैसे भी बसंती से ऐंठ कर ही ले जाता था, लेकिन अंदर ही अंदर वह भी जानता था कि बसंती पर वह पहले की तरह हुकूमत नहीं चला सकता। उधर और भी बहुत सी बातें हुईं, लंगड़े दर्जी ने सचमुच मुकदमा कर दिया और महीने में एक आध बार पेशी भी होने लगी। कचहरी में दीनू भी गया, पृष्ठ संख्या 159, और वहाँ पर बयान दे आया कि मेरी शादी बसंती से हो चुकी है और उसने इसलिए शादी की कि उसके घर बच्चा नहीं हो रहा था, और शादी के सबूत अपने बच्चे को भी पेश किया। मुकदमे के कारण बसंती का बाप बहुत सटपटाता था, लेकिन दीनू और बसंती को डराने धमकाने के बावजूद उसका अभी तक बना बनाया कुछ नहीं था। बसंती साइकिल पर बैठी फर्राटे से रोज उसके सामने से गुजर जाती थी। दूध के बूथ पर उसकी अपनी माँ से भी भेंट होती और माँ उसे देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती, पर बसंती को इसकी भी परवाह नहीं थी। एक दिन अपने आप ही अपनी बोतलों का छिक्का माँ के सामने रखती हुई बोली, मुझे काम है, मैं जा रही हूँ, यह लो पैसे, मेरी बोतलें भी ले लेना। मतलब कि बसंती की गृहस्थी की गाड़ी चलने लगी थी और लगने लगा था कि उसकी गति समतल ही बनी रहेगी। तभी कुछ एक महीने के बाद की बात रही होगी, श्यामा बीवी के घर वह फिर से थोड़ा बहुत आने जाने लगी थी। हालांकि श्यामा बीवी की आंखों में पहले जैसी सद्भावना नहीं रह गई थी। बसंती ने श्यामा बीवी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि श्यामा बीवी ने छूटते ही उससे कहा, तू चोरियां करती फिरती है, मुझे बदनाम कर रही है। मैंने किसकी चोरी की है बीबी जी, बसंती ने हंसकर कहा। बसंती की समझ में नहीं आया कि श्यामा बीबी ठिठोली कर रही हैं या सचमुच शिकायत कर रही हैं। बसंती अपना बच्चा गोद में उठाए हुए थी और खुद हल्के पीले रंग की साड़ी पहने हुई थी। कोई उसे देखकर यह नहीं कह सकता था कि यह घरों में चौका बर्तन करती है। पप्पू को तो विशेष रूप से बना संवार कर लाई थी। उसके सिर पर फूंदने वाली गुलाबी रंग की टोपी थी, आंखों में काजल था और पाँव में मोजे थे। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? इतने बढ़िया कपड़े बच्चे को भी पहना रखे हैं और खुद भी पहने हुए हैं। बसंती हंस दी। ओ बीबी जी, पहले पूछ तो लिया होता, बसंती ने कहा और चुपचाप पृष्ठ संख्या 160 मुढ़े पर श्यामा बीवी के निकट बैठ गए। यह साड़ी तो मुझे मेरे घर वाले ने लेकर दी है। कौन से घर वाले ने? लंगड़े दर्जी बुलाकी राम ने, और किसने? और फिर वह हंसने लगी और बुलाकी की नकल उतारते हुए बोली, कहने लगा, देख तो बसंती रानी, तेरे लिए क्या लाया हूँ, तेरा नाम भी बसंती, साड़ी भी बसंती, और खी खी करके हंसने लगी। बच्चे के जूते ये कहाँ से लिए हैं? लंगड़े दर्जी का घर छोड़े तो तुझे महीनों बीत चुके हैं। बसंती का चेहरा लाल पड़ गया। ये भी कहीं से लिए गए, कहाँ से मिले? ओ बीबी जी, आप तो पीछे ही पड़ जाती हैं, मिल गए कहीं से? और ये नायलान के मोजे, यह तो अपने ही हैं बीबी जी, तू मेरे घर नहीं आया कर बसंती। क्यों बीबी जी, आप कहेंगी तो नहीं आऊंगी। तू ये करतूते करने लगी है, तुझे कोई घर में घुसने नहीं देगा। सच सच बता, तूने बच्चे के जूते कहाँ से लिए? इस पर बसंती धीमे से बोली, छोटी मोटी चोरी तो सभी करते हैं बीबी जी, पर मैंने नहीं की। तूने कहाँ से लिए हैं? पप्पू के जूते बीवी जी, मुझे पार्क में पड़े मिले थे, जहाँ बच्चे झूला झूलते हैं ना, वहाँ एक झोपड़ी के पास पड़े थे। पहले दिन मैंने नहीं उठाए, उन्हें थोड़ा और पीछे सरका दिया, झाड़ी के नीचे कर दिया। बसंती हंसने लगी। दूसरे दिन भी उन्हें लेने कोई नहीं आया, फिर जब अंधेरा हुआ तो मैंने उठा लिए। बसंती ने चुटकी बजाते हुए कहा, यह चोरी तो नहीं ना? चोरी नहीं तो क्या है, यह आधी चोरी है बीवी जी, पूरी चोरी नहीं। पृष्ठ संख्या 161 और मौजे, मौजे बीवी जी मैंने अपने पैसे से खरीदे हैं। सच? नायलान के मोजे तूने अपने पैसे से खरीदे हैं? लंगड़े दर्जी के पैसे से? वह भी तो अपने ही पैसे थे ना, बसंती ठहाका मारकर हंसती। ये तो मेरे पास बहुत दिन के पड़े हैं, जूते अच्छे हों तो मोजे भी तो अच्छे होने चाहिए ना। पार्क में तो बीबी जी किसी को मालूम भी नहीं पड़ता कि पप्पू मेरा बच्चा है। वहाँ तो लोग समझते हैं कि मैं इस बच्चे की आया हूँ, इसे घुमाने लाई हूँ। सच? पर श्यामा बीवी के चेहरे पर अविश्वास का भाव देखकर बसंती बोली, देखो बीवी जी, जो कुछ तो मैं अपने पप्पू के लिए करती हूँ ना, उसे तो मैं चोरी मानती ही नहीं। कोई कुछ भी कह ले, अपने लिए कुछ उठाऊं तो बेशक मुझे चोर कह लो। श्यामा बीवी अभी भी उसके चेहरे की ओर घूरे जा रही थी। बसंती ने अपनी सफाई देते हुए कहा, ओ बीवी जी, कुछ लोगों के घर में इतनी चीजें बिखरी रहती हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं होता कि उनके घर में क्या है। इसका मतलब है तू वहाँ चोरी कर ले? चोरी कौन करता है बीबी जी, मैं तो यूं ही आपको बता रही हूँ। मांग कर ले तो तुम्हें कोई दे भी देगा, श्यामा ने कहा। मांगने पर कोई कुछ नहीं देता बीबी जी, मांगो तो कोई कच्ची कौड़ी की चीज भी नहीं देता। तू तो निरी जानवर है। क्यों बीबी जी, मैं जानवर कैसे हुई? पप्पू को इतने अच्छे कपड़े पहनाएगी तो कोई तुझे घर में घुसने नहीं देगा, तब तुझे चोर समझेंगे। बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाओ तो भी चोर, अपने पैसे से खरीद कर पहनाओ तो भी चोर। श्यामा बीवी वसंती के चेहरे की ओर देखती रहीं, फिर उपेक्षा के स्वर में बोली, आज आई कैसे है? ओ बीवी जी, सच मैं तो आपको बहुत बड़ी खबर सुनाने आई हूँ। आपने पृष्ठ संख्या 162 इधर दूसरी बातें शुरू कर दी। रुक्मी के बच्चा होने वाला है। अच्छा, उसका गर्भ सचमुच ठहर गया है बीवी जी? सारा दिन लेटी रहती है। तू उसे मेरठ ले गई थी क्या? शकुंतला वाली दवाई दी थी? नहीं बीवी जी, दीनू उसे डॉक्टरनी के पास ले गया था। मैं भी साथ में गई थी, उसने कहा बस लेटी रहे। उसके मजे हैं बीवी जी, घर का कोई काम वाम नहीं करती, सारा वक्त लेटी रहती है। कुछ देर तक श्यामा बीवी चुप बनी रहीं, फिर सिर झटक कर और भौहें सिकोड़ कर बोली, तू सारी उम्र मारी मारी फिरेगी वसंती। क्यों बीवी जी, उसके बच्चा हो गया तो घर में तुझे कोई जूती बराबर भी नहीं समझेगा। क्यों बीवी जी? बसंती का चेहरा पीला पड़ गया और वह श्यामा बीवी के चेहरे की ओर देखने लगी। आप ठीक नहीं कह रही हैं बीवी जी, पप्पू से वह बहुत प्यार करता है, वह तो उसे अपनी गोद में से उतारता ही नहीं। पप्पू से प्यार उस वक्त तक ही है जब तक उसका अपना बच्चा नहीं हो जाता, यह भी तो उसका अपना ही बच्चा है बीवी जी। तू कभी नहीं समझेगी, पप्पू उसका बेटा है, पर वह तेरा पति तो नहीं है। क्यों बीवी जी, यह तो कचहरी में भी कह आया है कि उसके साथ मेरी शादी हुई है। कह आया है तो कह आया है, पर तुझे अपने पास रखे या नहीं रखे यह तो उसकी मर्जी पर है ना। मेरे बिना यह घर चल ही नहीं सकता बीवी जी, मैं ही तो अकेली काम करती हूँ। श्यामा बीवी ने फिर से सिर झटक कर कहा, सुन बसंती, तेरी हैसियत तो इस घर में तेरे बच्चे की वजह से है। रुक्मी को बच्चा हो गया तो तेरी हैसियत दो कौड़ी की रह जाएगी। पृष्ठ संख्या 163। हैसियत क्या होती है बीबी जी? हैसियत यह होती है कि फिर तुझे उस घर में कोई पूछेगा नहीं। बसंती एकटक श्यामा के चेहरे की ओर देखे जा रही थी। या तो यह हो कि अब की बार भी उसका बच्चा न हो, पर अगर ना भी हो तो भी तो दीनू जो चाहे कर सकता है। क्या कर सकता है बीवी जी? क्यों, उनके बच्चा न हो और वह पप्पू को लेकर यहाँ से चला जाए? आप क्या कहती हैं बीवी जी, पप्पू को मुझसे कौन छीन सकता है? अगर कचहरी वालों ने तुम्हारी शादी की बात मान ली तो दीनू बिट्टू का बाप हुआ या नहीं? पर वह यह थोड़े कर सकता है कि मेरे बेटे को ले जाए और मुझे यहाँ छोड़ जाए, वह कुछ भी कर सकता है। बसंती सिर हिलाती नहीं नहीं करती रही, लेकिन उसका दिल आशंका से भर उठा। तू तो अंधी है बसंती, तुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता। दीनू कोई काम नहीं करता, बल्कि जैसे काम वह करने लगा है उनसे तो एक दिन पकड़ा गया तो जरूर जेलखाने की हवा खाएगा। उधर गांव में उसकी जमीन है, बूढ़ी माँ है, वह अपनी बीवी को गांव में छोड़कर वापस भी तो लौट सकता है बीवी जी। पहले भी तो उसकी बीवी गांव में रहती थी और वह शहर में रहता था। मैं क्या जानू क्या होगा, पर मुझे तो आसार अच्छे नज़र नहीं आते। बसंती को श्यामा बीवी की बातें समझ में नहीं आ रही थी, श्यामा बीवी की सोच ही निराली थी। पर बसंती का दिल दहल सा गया और मन शंकित हो उठा। तू पागल ना होती तो तेरी यह हालत ही क्यों होती? मैंने क्या किया है बीवी जी, बिना जाने समझे दीनू के साथ भाग गई, यह पागलों वाली बात नहीं थी तो क्या था? ओ बीवी जी, उसके साथ नहीं जाती तो बूढ़े के साथ बांध दी जाती। पृष्ठ संख्या 164। फिर भुगत जो भुगतना है वो बीवी जी, बसंती ने कहा और चुप हो गई। श्यामा बीवी की बातों को सुनते हुए एक अंधियारा सा साया बसंती की आंखों के सामने उतर आया। एक विचित्र सा परिवर्तन आ गया था। पहले श्यामा बीवी बात करती थी तो उसमें सद्भावना का स्वर सुनाई पड़ता था, अब सद्भावना के स्थान पर एक प्रकार की कटु आलोचना आ गई थी। बसंती के प्रति अपना कर्तव्य वह अभी भी निभाती थी, लेकिन जैसे अब केवल औपचारिकता का निर्वाह कर रही थी। उधर बसंती जो पहले कभी भी श्यामा बीवी की बातों की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देती थी और बात बात पर तो क्या बीवी जी कहकर उड़ा दिया करती थी, अब श्यामा बीवी की बातों को ध्यान से सुनने लगी थी और उन्हें सुनते हुए उसके अंदर सिरहन सी उठती थी। पहले सारा वक्त उसके मन में एक प्रकार की तरंग सी उठती रहती थी, अब श्यामा बीवी की बातें सुनते हुए उसका दिल डूब डूब जाता था। दोनों एक दूसरे के सामने बैठी थीं, बसंती की ओर देखते हुए श्यामा का मन फिर से शंकित हो उठा था। जाने यह कौन है और क्या करती फिरती है। जिस आदमी के साथ रहती है वह भी कोई आवारा सा आदमी है। मैंने इसे बहुत ढील दे रखी है, कहीं किसी दिन मुझे पछताना ही ना पड़े। बसंती कुछ देर तक बैठी रही, फिर उठ पड़ी। अच्छा बीबी जी, अब चलूँगी, बहुत देर हो गई है, अब घर जाकर खाना बनाऊँगी। बच्चे को बाहों में लेकर बसंती ने अपना थैला उठाया, सीढ़ियों की ओर बढ़ ही रही थी कि श्यामा बीबी को शक हो गया। थैले में क्या उठाए घूम रही है बसंती, दिखा तो इसमें क्या है। कुछ भी नहीं बीबी जी, पप्पू के कपड़े हैं, देखूं तो। और श्यामा ने आगे बढ़कर उसके थैले में हाथ डाल दिया। थैले के अंदर एक बड़े से डिब्बे पर उसका हाथ लगा। यह क्या है, श्यामा बीबी ने कहा और उसे बाहर निकाल लिया। बड़ा सा हॉर्लिक्स का दूध का डिब्बा था। यह कहाँ से उठा लाई है बसंती। पृष्ठ संख्या 165, बाजार से लिया है बीबी जी, पूरे 11 रुपये लग गए हैं। घर में कभी पप्पू को दूध मिलता है, कभी नहीं मिलता, मैं यह ले आई। देर तक श्यामा बीबी बसंती के चेहरे की ओर देखती रही, फिर डिब्बे को वापस थैले में रखते हुए बोली, आगे से आओ तो अपना थैला नीचे आंगन में रखकर आया करना बसंती, और कमरे की ओर घूम गई।